ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 अध्याय 10। अध्याय का शीर्षक है भगवान रामचंद्र की लीलाएं। श्लोक संख्या 55। प्रेमणा अनुवृत्त्या शीलेन प्रश्रया अमनता सती भिया प्रिया च भावक्या भर्तु सीता आहरत मना। प्रेम्णानुवृत्तशीलेन प्रश्रयावनता सती भिया ह्रिया च भावक्या भर्तु सीता हरन्मना। प्रेम्णानुवृत्तशीलेन प्रश्रयावनता सती भिया ह्रिया च भावक्या भर्तु सीता हरन्मना। प्रेम्णानुवृत्तशीलेन प्रश्रयावनता सती भिया ह्रिया च भावक्या भर्तु सीता हरन्मना। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमत् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की शब्दार्थ। प्रेम्णानुवृत्त्या प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक पति की सेवा करने के कारण शीलेना ऐसे उत्तम आचरण के द्वारा प्रश्रया अमनता सदैव पति के प्रति विनीत एवं उसे संतुष्ट करने के लिए तैयार सती सती साध्वी भिया भयभीत होने के कारण रिया लज्जा से च भी भावक्या पति के भाव को समझकर भर्तु अपने पति के सीता सीता देवी ने आहरत मोहित कर लिया मना मन को। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य ये अध्याय 10 जो हम कर रहे हैं 9वें स्कंद का यह आखिरी श्लोक है और इसका अनुवाद और तात्पर्य बहुत ही शक्तिशाली अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं सभी श्लोकों की भांति। तो आज के अनुवाद और तात्पर्य में से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं कि माता सीता के अंदर ऐसे कौन से गुण थे जिससे वह भगवान के मन को हर सकी, जिससे उन्होंने भगवान का ध्यान आकर्षित कर लिया, उनके हृदय पर विजय प्राप्त कर ली। दूसरा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो गृहस्थ आश्रम को एक बहुत ही सुखी पारिवारिक जीवन बनाता है, आध्यात्मिक रूप से भौतिक रूप से दोनों से। तीसरा इसी श्लोक और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से ये जो भौतिक जगत है ये जो संसार है इसकी नारकीय स्थिति को परिवर्तित करके हम यहाँ पर स्वर्ग उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका अनुवाद एवं तात्पर्य इस प्रकार है। अनुवाद। सीता देवी अत्यंत विनीत आज्ञाकारिणी लज्जालु तथा सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वह भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। कृपया दोहराएं। सीता देवी अत्यंत विनीत आज्ञाकारिणी लज्जालु तथा सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। तात्पर्य, जिस तरह भगवान राम आदर्श पति हैं, एक पत्नी व्रत, उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी हैं। ऐसे संयोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन जाता है। यद्य आचरी श्रेष्ठास तत्देव तरोजना। महापुरुष जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यदि राजा, नेता तथा ब्राह्मण शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करें तो सारा जगत स्वर्ग बन जाता है। निसंदेह इस जगत से नारकीय दशाओं का नामो निशान मिट जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के अंतर्गत परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं शीर्षक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो पहला श्लोक इस पर लिखा है, पहला जो प्रश्न है कि माता सीता का अंदर ऐसे क्या योग्यता थी कि उन्होंने भगवान का हृदय को विजय प्राप्त कर लिया, उनका ध्यान आकर्षित किया। तो कौन कौन सी उनके अंदर योग्यताएं थी? प्रेम से, चरित्र से, लज्जा से, चेस्टिटी, सती से, और हाँ, सबसे जो पहला शब्द आया है प्रेमणा अनुवृत्त्या, कि किस प्रकार से प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक पति की सेवा करने के कारण। उसके बाद तशिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, तो किस क्या फॉर्मूला है गृहस्थ आश्रम को एक बहुत ही सुखी आश्रम बनाने का, जिनके पास बुक है वो नहीं, जिनके पास बुक नहीं है कोई अगर वो बताना चाहे, इन्होंने सुना हो। हाँ, आइडियल हस्बैंड या और आइडियल वाइफ, यानी कभी भी संभव नहीं है, ऐसा है आइडियल हस्बैंड एंड आइडियल वाइफ, वो तो भगवान रामचंद्र और माता सीता हो सकते थे। तो उन्होंने एक आदर्श उदाहरण स्थापित किया, और कैसे अगर हम उनके चरित्र से सीख लेके उन गुणों को विकसित करते हैं तो गृहस्थ आश्रम या कोई भी आश्रम हो उसको बहुत सुखमय बना सकते हैं। और तीसरा श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि किस प्रकार से जो भौतिक जगत है इसकी पूरी की पूरी नारकीय स्थिति को बदल कर यहाँ पर स्वर्ग उत्पन्न किया जा सकता है, उसके बारे में क्या लिख रहे हैं तात्पर्य में। जिनके पास पुस्तक नहीं है और उन्होंने सुना इस पर नहीं, ये नहीं है का पालन कर हरे कृष्ण आंदोलन का माता जी। हाँ, यदि राजा, नेता तथा ब्राह्मण शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करें तो सारा जगत स्वर्ग बन जाए। कि जो लीडरशिप है, और जो खास, अब कोई कहेगा कौन है लीडरशिप, किसको कहेंगे लीडर, मैं तो प्रभु जी फॉलोअर हूँ, लीडर नहीं हूँ। तो लीडर की क्या डेफिनेशन है, कौन कौन से रोल भगवत गीता में शिला प्रभुपाद लिखते हैं वो स्वाभाविक लीडर हैं। एक मदर, फादर, एक टीचर और रूलर, ये चार तो नेचुरल लीडर्स नहीं हैं। और जिस प्रकार का उदाहरण वो स्थापित करते हैं उसी प्रकार का जनसाधारण उनको फॉलो करते हैं, और उसी हिसाब से जिस संसार की परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं। तो जो मैं मुख्य जिन पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा आज के इसमें, पहला माता सीता का चरित्र, और यहाँ पर जो उन्होंने गुण दिए हैं वो किसी भी संबंध को, और विशेषकर एक गुरु और शिष्य के संबंध में, एक शिष्य के जो क्वालिफिकेशन या जो योग्यता है उस पर्सपेक्टिव से, कि उन माता सीता के गुणों को अपना के वो किस प्रकार से गुरु परंपरा का मन को आकर्षित, उनके हृदय को आकर्षित कर सकता है, पहला ये। दूसरा, क्या क्या चुनौतियां आती हैं कि ये गुण विकसित करने के लिए, किन कारणों से अक्सर ये गुण नहीं पाए जाते। और तीसरा, कि कुछ प्रश्न जो मेरे मन में है उनके साथ मैं आपको छोड़ूंगा। पहला कि माता सीता की सबसे पहले अगर देखा जाए, हमारे गुरु परंपरा में भी ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिनमें बहुत से आचार्यों ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का ध्यान को आकर्षित का ध्यान आकर्षण किया है। सबसे पहले अगर हम लेना चाहें तो हमारे स्कॉन के संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद 1932 प्रभुपाद जी के इनिशिएशन का हुआ 1935 में, फरवरी 25, 1935, उस समय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का 62nd व्यास पूजा सेलिब्रेशंस मनाया जा रहा था जगन्नाथपुरी के अंदर। और उस समय शिला प्रभुपाद अपने शिला प्रभुपाद उस समय अभय बाबू मुंबई में स्थित थे, तो अपने गुरु भाइयों के साथ वहां पर शाम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया उनके गुणगान के लिए, जिसमें शिला प्रभुपाद ने एक कविता लिखी थी अपने गुरु महाराज के गुणगान में और एक स्पीच डिलीवर की थी। उन स्पीच को देखकर वहाँ के जितने उनके गुरु भाई थे बहुत ही आश्चर्यचकित और बहुत ही प्रभावित हो गए कि अभय बाबू, जिनको अभी 2 साल ही हुए हैं दीक्षा लिए हुए हैं, इस प्रकार से गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में इतने निपुणता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। और उन्होंने वो स्पीच और जो कविता है हारमोनिस्ट में पब्लिश करने के लिए भेजी गई। और जब उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस कविता को पढ़ा, बहुत ही प्रसिद्ध है, अडोर अडोर ये ऑल द हैप्पी डे ब्लेस देन हेवन स्वीटर देन मे व्हेन ही अपीयर्ड एट पुरी द होली प्लेस माय लॉर्ड एंड मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस। इसमें एक मुख्य 4 लाइनों ने विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ध्यान आकर्षित किया। किसी को याद है? एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट, दाओ हैज प्रूफ, इम्पर्सनल कैलामिटी, दाओ हैज प्रूफ। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको पढ़ा तो शिला सत्स्वरूप दास गोस्वामी लीलामृत में लिखते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से इस 4 पंक्तियों ने, इन 4 पंक्तियों में अभय ने अपने आध्यात्मिक गुरु का जो प्रचार है, इतना सशक्त प्रचार मायावाद के खिलाफ, उसके एसेंस को कैप्चर कर लिया। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये इस बात को अंकित किया कि कितना अभय उनके मन को कितना अच्छे से जानते हैं। और अभय को जब ये पता चला कि उनके गुरु महाराज की कविता बहुत पसंद आई, निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न हुए। परंतु साथ ही साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों को एक निर्देश दिया, वट एवर ही राइट्स पब्लिश इट। और उनकी गणना किससे की गई कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को शिला रूप गोस्वामी इतने अच्छे से जानते थे। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, गौ निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्व पदांतिकम, कि श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को कितने अच्छे से शिला रूप गोस्वामी समझते थे। साथ ही साथ हम देखते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में रह रहे थे तो जो उनके अंतरंग पार्षद है स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, उनके हृदय को इतने अच्छे से जानते थे कि जैसा भी महाप्रभु का भाव होता था उस प्रकार से वो एक श्लोक या भजन को उदित करते थे, जिससे महाप्रभु के उन भावों में उनको और उन आनंद पड़े, उसको फैसिलिटेट करते हुए। तो किस प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय को जाना जाता है, उसके एसेंस को किस कैसे जाना जाता है, ये कैसे कैसे आता है कि मैं अगर मैं किसी के व्यक्ति को हृदय को जानना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे जान सकता हूँ, उसके लिए क्या उसको सबमिट करना पड़ेगा और सेवा करनी होगी। एक माता भी अपने पुत्र का हृदय या उसके जो एटीट्यूड है उसको समझ जाती है कि बच्चे की क्या आवश्यकता है और उस प्रकार से उसकी सेवा करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि माता सीता जो यहाँ शब्द है प्रेमणा अनुवृत्त शीलेना, कि प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक पति की सेवा करने के कारण। तो जब कोई एक शिष्य प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा करता है तब वह गुरु के हृदय को समझ सकता है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से माता सीता और भगवान रामचंद्र का जो संबंध था इतना गूढ़ और इतना गहरा था कि माता सीता जिस लिखा है कि इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वह भगवान के मन को पूरी तरह मोह सके। तो ये आता है सेवा से, परंतु सिर्फ सेवा से नहीं, सेवा के साथ साथ जब इस प्रकार के गुण भी होते हैं जिससे उस वो सेवा प्लीजिंग भी होनी चाहिए, वो सेवा प्लीजिंग तब होती है जब इस प्रकार के गुण सेवा करने वाले के अंदर विकसित हो। इसके साथ साथ हम देखते हैं एक दूसरे प्रकार का एटीट्यूड भी रहता है। एक पुलिस भी, एक जो क्रिमिनल है अगला क्या मूव लेगा उसके हृदय को भी समझ जाती है कभी कभार, या एक चोर का वो सच बोल रहा है नहीं बोल रहा उसके हृदय को भी समझ जाती है। तो दोनों तरफ इसका है, एक आउट ऑफ लव या दूसरी तरफ कि वो न्यूसेंस वैल्यू इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दे कि उसका उसके हृदय को समझ जाए। तो क्या ये सिर्फ साइकोफिजिकल नेचर के कारण होता है कि किसी को ऐसा गुण है कि वो दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसको समझ जाए? क्या ये किसी नेचर के हिसाब से होता है? नहीं, वो एक डिग्री तक शायद हो सके, हेल्प कर सके उसके एक दूसरे व्यक्ति के साइकोफिजिकल नेचर को समझने के लिए, परंतु अगर हृदय को आकर्षित करना है, प्रेम करना है, उसके लिए इन गुणों की आवश्यकता है और प्रेम पूर्वक सेवा करने की आवश्यकता है। तो कोई पूछ सकता है कि किसी दूसरे के हृदय को आकर्षित करने की आवश्यकता ही क्या है, ऐसा क्यों? एक गुरु या एक भक्त या एक पत्नी एक पति के लिए, या उल्टा एक पति पत्नी के लिए उसके हृदय को आकर्षित या उसके मन को समझ जाए, मन को पूरी तरह मोह सके, इसकी आवश्यकता ही क्या है? Nectar of Krishna consciousness will not flow from his hand. Okay. और सेवा का लक्ष्य यही है कि हृदय मोहित करना। परंतु हम क्यों, मतलब why at all bother with all these qualities या with attracting someone's heart? Why to develop relationship? एक पॉइंट जो मुझे लगता है मेरी अंडरस्टैंडिंग कि आध्यात्मिक जीवन में हर चीज़ आशीर्वाद पर डिपेंड करती है, ब्लेसिंग, हाउ वी अट्रैक्ट मर्सी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम अदर डिवोटीज। और कभी कभार ब्लेसिंग्स को ऐसे लिया जाता है कि प्रभु जी कृपया आशीर्वाद दे दीजिए, ब्लेसिंग दे दीजिए, बट इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस। जब किसी दूसरे का व्यक्ति जब आशीर्वाद मिलता है वो कैसे होता है? जब उसको जेन्युइनली प्लीज किया जाए, कि वो खुद भी रोक नहीं सकता कि अगर वो आशीर्वाद ना भी देना चाहे परंतु उसके हृदय से आशीर्वाद इट जस्ट डायरेक्टली फ्लोस, तो वो कैसे होता है? वो इसी से होता है कि इन गुणों से या इन सेवाओं से गुरु आकर्षित होते हैं या अन्य वैष्णव जन आकर्षित होते हैं और उस प्रकार से वो ब्लेसिंग्स उनकी अर्न की जाती हैं इन गुणों का विकसित करके। एक पहलू जो मेरे को लगा, दूसरा यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि पूरा का पूरा संसार को हम स्वर्ग बना सकते हैं अगर वैदिक शास्त्रों के उदाहरण को हम अपने जीवन में उतारें, और विशेषकर जो यद यद आचरति श्रेष्ठ जो इन लीडरशिप पोजीशंस पे हैं, माता पिता शिक्षक। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि लीडरशिप, शिला प्रभुपाद इस जगत के लिए कंसर्न्ड है। शिला प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि कुछ भी करके अपना रास्ता काट लो, किसी ना किसी तरह करके इस जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत भाग जाओ और इस जगत की परवाह मत करो। इस्कॉन के सात उद्देश्य श्रीला प्रभुपाद जी ने बताए, उसमें से पहला उद्देश्य क्या है? टू ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटीज एंड चेक द इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज इन दिस सोसाइटी। तो श्रीला प्रभुपाद जी समाज को लेकर कंसर्न थे, और आप कितने भी अलग आज के समय में विशेषकर आप देखेंगे कहीं भी सोशल मीडिया पे हो, नेट पे हो, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग सफलता के सूत्र को प्रस्तुत करते हैं, परंतु बहुत बार ये जो एसेंस है इसको मिस कर देते हैं कि किस प्रकार से जो वैदिक सिद्धांतों के द्वारा जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से इस संसार में असली सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। तो इस कृष्णवंशी वदन प्रभु जब हम भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो बता रहे थे कि भक्ति शास्त्री करने का एक लाभ क्या है, कि आपको वैदिक सिद्धांतों में क्या लिखा है या उसका जो क्या कोर एसेंस है ये जानने को मिलता है। उदाहरण तो दूर की बात है, ये हम बाद में स्थापित करेंगे, पहले ये तो पता चले कि वैदिक सिद्धांत में क्या उदाहरण एग्जिस्ट करते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि वैदिक सिद्धांतों में, वैदिक शास्त्रों में कौन से उदाहरण एग्जिस्ट करते हैं? हाउ डू वी नो दैट? पढ़कर या उनको सुनकर। तो पीछे अभी इस्कॉन लीडरशिप संगा मायापुर में हो रहा था, तो वहाँ पे प्लानरी में जितने भी लीडर्स हैं और वो शेयर कर रहे थे कि जीबीसी मीटिंग्स में उनका वन ऑफ द प्राइम एजेंडा या प्राइम एंजाइटी या कंसर्न क्या था, कि आज के समय में इस्कॉन के भक्तों में, बाहर की बात तो छोड़ दीजिए, इस्कॉन के भक्तों में श्रीला प्रभुपाद बुक्स पर्याप्त मात्रा में नहीं पढ़ी जा रही हैं। तो हम किसी भी पुस्तक, किसी भी ग्रंथ, किसी भी प्रकार के लिटरेचर को पढ़ने के लिए तैयार हैं, सेव एंड एक्सेप्ट श्रीला प्रभुपाद बुक्स। तो आप किसी भी ऑथर, बहुत बाहर के बहुत सारे ऑथर से अट्रैक्ट हो जाएंगे, न्यूज़पेपर से, न्यूज़ में, परंतु श्रीला प्रभुपाद जी का अगर पूछा जाए कि मान लीजिए अगर इलेक्शन का समय है या पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, अगर किसी से पूछा जाए श्रीला प्रभुपाद जी का क्या मत था, तो जो एक बहुत ही भाई सुपरफिशियल से अक्सर इधर उधर सुनते हैं बस वही बता पाएंगे, बट एक्चुअल में अलग अलग जगह प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है उसके बारे में। या किसी भी इश्यू को उठा के देख लिया, अगर मान लीजिए टेररिज्म है या क्राइम केसेस हैं या फैमिली ब्रेकअप्स हैं या अनएम्प्लॉयमेंट है या डिप्रेशन है, मेंटल इलनेस है, इन सब चीज़ों पर श्रीला प्रभुपाद जी का क्या वर्डिक्ट था। और वहाँ पर कौंतेय प्रभु ने एक एनालिसिस प्रेजेंट किया था जिसमें उन्होंने चार कैटेगरीज रखी थी, उसमें से पहला था इश्यूज, दूसरा था इंस्ट्रक्शन, तीसरा था कंटेक्स्ट, चौथा था इंटेंशन। तो उन्होंने बताया जब फर्स्ट जनरेशन होती है किसी भी रिलीजियस मूवमेंट की, तो उसके पास इश्यूज भी होते हैं, उस मूवमेंट में क्या क्या इश्यूज हैं, इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं फाउंडर आचार्य के क्योंकि प्रेजेंट हैं, उसका कंटेक्स्ट भी पता होता है कि क्योंकि फाउंडर आचार्य जिन्होंने मूवमेंट स्थापित किया वो उपस्थित हैं, तो कंटेक्स्ट भी पता होता है, और चौथा किस भाव से किया है, उस इंस्ट्रक्शन के पीछे वो यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शन है, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग है, या उसके पीछे इंस्ट्रक्शन को देने का उस समय क्या इंटेंशन था वो भी पता होगा। फिर जो सेकंड जनरेशन आती है तो क्या खत्म हो जाते हैं इन चारों में से? सबसे पहले खत्म होता है इंटेंशन। फिर थर्ड जनरेशन आते आते कंटेक्स्ट भी खत्म हो जाता है, और फोर्थ जनरेशन तक आते आते इंस्ट्रक्शन भी खत्म हो जाती है, सिर्फ इश्यूज बचते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसलिए बहुत सारे जो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं चार जनरेशन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते। और श्रीला प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं दैट इज फर्स्ट जनरेशन, उनके जो शिष्य हैं दैट इज सेकंड जनरेशन अधिकतर जितने प्रेजेंट हैं। तो उनका अगर वो वैदिक लिटरेचर ही नहीं पढ़ रहे तो हमने सेकंड जनरेशन में ही काम कर दिया, मतलब कंटेक्स्ट और इंटेंशन तो दूर की बात है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी नहीं पता, तो सेकंड जनरेशन के बाद ही मूवमेंट कोलैप्स होने के बहुत अधिक रिस्क है, डेंजर्स रहते हैं। अब चाहे हम उसको कुछ भी कहते हैं कि महाप्रभु ने प्रिडिक्ट किया है 10,000 साल तक चलेगा, बट इट्स अ रियल मैटर ऑफ कंसर्न कि व्हेन शिला प्रॉपर डिसाइपल्स विल लीव. अभी तो शिला प्रॉपर जी के शिष्य कोई कंफ्यूजन होती है इंस्ट्रक्शन में, उनका एटलीस्ट उनका एक पर्सपेक्टिव हमें पता है जो उनके साथ रहे हैं, प्रॉपर जी के लाइफ के बारे में सुना है. परंतु जब ये जनरेशन भी चली जाएंगी देन वॉट विल हैपन? शिला प्रॉपर लिखते हैं व्हेन एन आचार्य लीव्स देयर इज कंफ्यूजन. तो इसलिए कितना महत्वपूर्ण है इन वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, इंस्ट्रक्शंस ही नहीं इंस्ट्रक्शंस के पीछे कंटेक्स्ट और इंटेंशंस को भी समझना और उस हिसाब से अपने जीवन को ढालना. जीवन को ढालना और उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करें तो बहुत दूर की बात है, बट पहला स्टेप है इन वैदिक लिटरेचर्स को पढ़ना. और जब हम इन वैदिक शास्त्रों में देखते हैं तो इसमें बहुत ही आदर्श उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है और डेली डे टू डे लाइफ केसेस कोई ऐसा आइडियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट नहीं की गई. श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे हर प्रकार के कन्फ्लिक्ट, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे फैमिली हो, चाहे गवर्नेंस को लेकर, आप कोई भी फील्ड उठा कर देख लीजिए, वो सब श्रीमद् भागवतम में उपस्थित रहेगा और किस प्रकार से अलग अलग कैरेक्टर्स ने उन क्राइसिस में वर्क किया. अब परीक्षित महाराज, हालांकि देश पूरे पृथ्वी के राजा थे परंतु जब उनको कर्ज किया गया तो किस प्रकार से उन्होंने माफ कर दिया. नित्यानंद प्रभु किन्हें किन प्रकार से फॉरगिवनेस अब एक्सिबिट की जगाई और मदाई के केस में. नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर, उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से भरत महाराज जो भाव की स्थिति तक आके भी गिर गए फिर भी किस प्रकार से डिटर्मिनेशन से उन्होंने अपना आध्यात्मिक मार्ग को पूरा किया. अजामिल जो कैसे पहले एक आध्यात्मिक पार्क स्थित था बट गया एट द एंड ऑफ द लाइफ ही डिड इट. तो जय स्पिरिचुअल लाइफ को लेके हो, जय सोशल स्ट्रक्चर को लेके हो, लाइफ के किसी भी पहलू को लेकर इन वैदिक ग्रंथों में हमें केस स्टडीज मिलती हैं और उन अदर उदाहरणों को प्रस्तुत करने को मिलते हैं. तीसरा विशेषकर यहाँ पर सीता देवी का एक गुण को उल्लेख हुआ है जिसमें आता है लज्जालु, दैट इज शाइनेस. तो हम देखते हैं जो शाइनेस है शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में लगभग हर स्कंद में इस पर कुछ ना कुछ टीका देते हैं. पहले स्कंद में श्लोक है जब भगवान कृष्ण द्वारका वापस लौटते हैं, प्रसाद शिक्षा रुधा कुरु नार्यो दिदृक्षया वव्रुषु शुम कृष्ण प्रेम वृदा स्वितेक्षण, कि भगवान को देखने की इच्छा से जितनी भी रॉयल लेडीज थी कुरुस की वो महल के छत पर गए और आउट ऑफ शाइनेस एक स्माइलिंग शायली उन्होंने भगवान पर पुष्प वर्षा की. इसके तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं शाइनेस इज अ पर्टिकुलर एक्स्ट्रा नेचुरल ब्यूटी ऑफ द फेयर सेक्स एंड इट कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स, कि जो एक स्त्री है किस प्रकार से पुरुष का सम्मान को कमांड करती है, डिमांड नहीं कमांड करती है, वो है आउट ऑफ शाइनेस. फिर शिला प्रभुपाद लिखते हैं दिस शाइनेस इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू द फेयर सेक्स एंड इट एनहांसेस देयर ब्यूटी एंड प्रेस्टीज इवन इफ दे आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंट फैमिली और इवन इफ दे आर लेस अट्रैक्टिव. ये जो लज्जा का गुण है ये प्रकृति के द्वारा स्त्रियों को दिया हुआ एक बहुत अनुपम उपहार है और इससे उनका सौंदर्य को और सम्मान बहुत बढ़ जाता है. हालांकि चाहे वो दिखने में सुंदर ना हो या एक निम्न कोटि के परिवार से हो, परंतु अगर किसी स्त्री के पास ये क्वालिटी है शाइनेस की तो वो सबका सम्मान को कमांड करती हैं. और इसी तात्पर्य में शिला प्रभुपाद अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से वो और अपने मित्र के साथ एक द्वार पर बैठ के चर्चा कर रहे थे तो जो वहाँ पे काम करने के लिए वाली स्त्री है वो वहाँ पर आए, परंतु शाइनेस के कारण उन्होंने वहाँ पे आके बस खड़ी रही, उनको उन्होंने उनको हटने के लिए भी नहीं बोला. तो जब प्रभुपाद जी और उनके जो मित्र चर्चा कर रहे थे उन्होंने देखा कि वो वहाँ खड़ी हुई हैं और तो वो तुरंत हट गए और हालांकि वो काम करने वाली स्त्री थी, शिला प्रभुपाद लगते हैं हम दोनों के हृदय में उसके लिए जो सम्मान था बहुत बढ़ गया। और फिर शिला प्रभुपाद लिखते हैं, हाफ नेकेड लेडीज इन द स्ट्रीट डू नॉट कमांड एनी रिस्पेक्ट, बट अ शाय स्वीपर्स वाइफ कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल। और ये शायनेस पे इतना बल क्यों दिया है वैदिक लिटरेचर्स में, तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में आगे बताते हैं कि ये एक कंट्रोलिंग वॉल्व है। बताते हैं कि आदमियों के काम करने की जो प्रेरणा है वो स्त्री है, और स्त्रियों के पास, स्त्रियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं पुरुषों से, फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं, परंतु वो पुरुष को कंट्रोल कर सकती हैं। और शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जो माइटी जूलियस सीजर वॉज कंट्रोल्ड बाय क्लियोपेट्रा, सच पावरफुल वुमेन आर कंट्रोल्ड बाय शायनेस, देयरफॉर शायनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। अगर शायनेस ना हो, वंस दिस कंट्रोल वॉल इज लूजन, अगर इस वॉल को हम ढीला छोड़ दें तो क्या होगा, वुमेन कैन क्रिएट हैवॉक इन सोसाइटी बाय एडल्ट्री। एडल्ट्री मीन्स प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड चिल्ड्रन नोन एज वंट संकर हु डिस्टर्ब द वर्ल्ड। और बताते हैं जैसे कि एक पुरुष की तुलना की गई है मक्खन से और स्त्री की तुलना की गई है अग्नि से, जब भी ये पास में आएंगे मक्खन पिघलेगा ही पिघलेगा, तो इसको चेक करने के लिए, परंतु अगर स्त्री शाइनेस है तो एक लेवल तक चेक एंड बैलेंस बना रहता है। उसके बाद दशम स्कंद में बताते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण अलग अलग गोपियों के घर जाकर मक्खन को चुराते थे, परंतु यहाँ पर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं तात्पर्य में, उनको उल्लेख करते हुए उनके शिला प्रभुपाद जी के शिष्यगण, कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी वंशी बजाई तो उन्होंने वृंदावन के अंदर ही कमिटेड अ टेरिबल एक्ट ऑफ थीवरी व्हेन ही प्लेड ऑन हिज फ्लूट। तो उन्होंने क्या क्या चुराया, दैट वंडरफुल म्यूजिक स्टोल ऑल देयर वैल्यूएबल पोजेशन, किनके, गोपीज के, देयर सोब्रिटी शाइनेस फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन अलॉन्ग विद देयर वेरी माइंड, एंड इन अ स्प्लिट सेकेंड द म्यूजिक डिलीवर्ड ऑल दिस गुड्स टू कृष्ण। कि भगवान कृष्ण ने जो एक स्त्री के आभूषण है विशेष का लज्जा उसको चुरा लिया, तो भगवान कृष्ण को इस प्रकार से चोर भी कहा जाता है वृंदावन के अंदर। तो क्या जो ये शाइनेस का गुण है क्या सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है, क्या लगता है आप में से कितने भाग कहते हैं कि जो शाइनेस का गुण है ये पुरुषों के लिए भी है, कोई उदाहरण, कोई रेफरेंस, कैसे भगवत गीता के 16वें अध्याय में जो देवी गुण, उनमें से एक गुण है शाइनेस का, पृथु महाराज के संपर्क में भी आता है कि ही वॉज वेरी जेंटल एंड शाइनेस, और एक शिष्य का भी एक आभूषण है शाइनेस, खासकर वरिष्ठ भक्तों के समक्ष या गुरु के समक्ष शाइनेस, एक शिष्य को हमेशा शाइन बनकर रहना चाहिए। शाइनेस का अर्थ ये नहीं है कि अपनी ओपिनियन वॉइस ना करें, शाइनेस का अर्थ ये नहीं है कि हमारे साथ कोई कुछ भी आके कर रहा है हम बस शाय बन के रह रहे हैं, दैट इज नॉट शाइनेस। दूसरा, क्या कभी शाइनेस को हम त्याग सकते हैं, अगर त्याग सकते हैं तो किन परिस्थितियों में, और नहीं त्याग सकते तो कभी भी नहीं त्याग सकते। हाँ, गोपियों ने त्यागा कृष्ण के लिए, जब जीव गोस्वामी ने इस प्रकार से उनको ओपनली चुनौती देकर अपने गुरु के मान को बचाने के लिए उन्होंने किसी प्रकार की शर्म नहीं दिखाई और भिक्षा मांगने में डिस्ट्रीब्यूशन में भक्ति ब्रज भागवत साहिब महाराज एक बार बता रहे थे कि दो चीजों के लिए कभी नहीं शर्माना चाहिए, पहला है महाप्रसाद प्राप्त करने के लिए और दूसरा है मिशन के लिए लक्ष्मी मांगने के लिए। और दशम स्कंद में प्रसंग आता है कि एक गोपी दूसरे गोपी को कह रही है, जब अक्रूर भगवान कृष्ण को लेके जा रहे हैं तो एक गोपी दूसरे गोपी को कह रही है कि अपनी लज्जा को त्यागो और किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण को रोको, यहाँ पर शायनेस दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब कृष्ण भावनामृत फिसल रही हो जीवन से, अपने जीवन से या दूसरों के जीवन से, तब शायनेस को थोड़ा साइड रख के उसको बचाना चाहिए। दैट्स माय। अब यहाँ पर एक और प्रश्न जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मेरे मन में आ रहा था कि यहाँ पर लिखा है कि अगर भगवान राम और माता सीता इन दोनों के उदाहरण को फॉलो किया जाए तो गृहस्थ लाइफ बहुत हैप्पी हो सकती है, तो क्या भगवान राम और माता सीता का गृहस्थ जीवन वास्तव में खुश था? शुरू में अभी विवाहित होकर आए थे, उनको 14 साल के लिए वनवास हो गया, वनवास में गए तो रावण ने अपहरण कर लिया, जब रावण से छुड़ा के लाए तो अग्नि परीक्षा दी, फिर जब वापस आए तो एक धोबी के कहने पे भगवान राम ने उनका परित्याग कर दिया, वो भी जब गर्भवती थी, और उसके बाद भी जब वापस बुलाया तो दोबारा अग्नि परीक्षा। तो क्या भगवान राम आदर्श पति हैं? हो सकता है वो आदर्श राजा हों, आदर्श राजा अपनी तरफ, बट आदर्श पति के रूप में उनका गुणगान क्यों किया गया? उनका गुणगान तो आदर्श राजा के रूप में करना चाहिए ना, या राजा की भूमिका पति की भूमिका से बड़ी है? आदर्श पति कैसे हुए? उन्होंने कहा कि मैंने आपको अपहरण से बचाया है तो अपने कुल की मान की रक्षा के लिए बचाया, ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए। तो कैसे, तो क्या पहला प्रश्न, क्या उनका गृहस्थ जीवन आनंदमय था? दूसरा, क्या गृहस्थ जीवन आनंदमय होना चाहिए? शिला प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, जब उनकी शादी हुई और उनको अपनी पत्नी से उनकी बनती नहीं थी तो वो निकल पड़े दूसरी शादी करने के लिए, तब उनके पिता गौर मोहन देव जी ने उनको रोका कि अगर तुम्हारा अपनी पत्नी से नहीं बन रही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, इसी बहाने तुम उससे डिटैच होकर अगले आश्रम में जाओगे। यही दिन अगर आप लेटर्स पढ़ेंगे हिजोलेस गोपाल कृष्ण साई महाराज के केस में भी, शिला प्रभुपाद लेटर्स में लिख रहे हैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल देख के, महाराज की भी जब मैरिज हुई या कोई प्रॉब्लम आती थी प्रभुपाद महाराज प्रभुपाद जी को लिखते थे, उस समय जब गृहस्थ आश्रम में थे प्रॉपर लिखते थे दैट इज वेरी गुड, आई विल गिव यू सन्यास एंड यू विल ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो प्रश्न ये उठता है गृहस्थ जीवन आनंदमय होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर आनंदमय होगा तो व्यक्ति क्या उसमें आसक्त नहीं हो जाएगा और अगले आश्रम में जाएगा ही नहीं? अगर आप किसी को ऐसी पत्नी मिल जाए जिसने पूरी तरह से उसके मन और हृदय को मोह कर लिया अपने इन गुणों से, या उल्टा ले कोई किसी को ऐसा पति मिल जाए तो क्या उसको कभी जीवन में वैराग्य आएगा? तो पहला प्रश्न, क्या उनका भगवान राम और माता सीता का गृहस्थ जीवन आनंदमय था या नहीं था? कैसे था, क्या प्रूफ है? वो कितने वर्ष टोटल रहे थे, कितना परसेंटेज हुआ उनके मैरिड लाइफ का? और 13 साल वो साथ रहे, परंतु माता सीता एक राजकुमारी राजकन्या जिनका बचपन से कैसा लालन पोषण हुआ, और वो जंगल में रह रहे हैं। जंगल अभी हमें लगता है जंगल मतलब साइट सीइंग और एक ऐसा फैंटेसी सा इमेज क्रिएट होता है, हर तरफ ग्रीनरी नदियां पहाड़, बट जंगल मतलब जंगल होता है। तो कैसे रामायण में से हम कितनी लीला ऐसे सुनते हैं कि भगवान राम और माता सीता का जिसमें परस्पर उन्होंने आनंद उठाया, और कितनी लीला ऐसे सुनते हैं जो दुख से भरे। तो कैसे उनका जीवन होता, और यहाँ पर माता सीता का परित्याग कर दिया, क्या ये एक आदर्श पति का वो है लक्षण है? जब वो गर्भवती थी एक धोबी के सुनने पर, एक लो निम्न कोटि का कोई मान लो हर जगह चर्चा हो रही हो तो अलग बात है, अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सारे लॉजिकल रीजन थे माता सीता को ये उनको अनजस्टिफाइड प्रूफ करने के कि ये डिसीजन कैसे गलत है। फिर भी माता सीता का जहाँ पे गुणगान है उनका आप चरित्र देखिए कि जब उनके पुत्र हुए लव कुश, उन्होंने भगवान रामायण पूरी उनको बताई यहाँ तक, परंतु ये नहीं बताया उसमें सीता मैं ही वो सीता हूँ, कैसे भगवान राम ने त्याग दिया उन्हें, पर ये नहीं बताया कि वो सीता मैं ही हूँ, कि अगर वो बताते तो शायद उनके प्रति आक्रोश होता।
हम डिस्कस करते हैं कि माता सीता रामचंद्र और ठीक था गलत था, मुझे लगता है कि अब क्योंकि मियाँ बीवी के बीच की बात करें तो मियाँ बीवी के बीच में तीसरे को पढ़ना नहीं चाहिए वैसे, ये सारे बैठ के जो मामा घनी करते हैं बीच में से कि ये यूँ था उसने यूँ करना चाहिए था, हमें कहीं नहीं मिलता कि सीता को कभी तकलीफ हुई उसने कोई डायलॉग नहीं मारा, ये बाकी जो सारे उनके जैसे ना चाय से ज़्यादा प्याली गर्म बाकी लोग
पर निश्चित रूप से माता सीता को दुख तो हुआ था, रामायण में बहुत विस्तृत में लक्षण है। हाँ कंप्लेन
मैं भी यही कहने वाला था जो प्रभु जी कह रहे हैं, और सीता माता को कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आता कि उन्होंने कहीं पे कोई आक्रोश व्यक्त किया। इनफैक्ट जो चीज़ यहाँ पे प्रॉपर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जैसे अगर सोसाइटी के लीडर्स ये एग्जाम्पल फॉलो करें, तो राम ने सीता देवी को क्यों फॉरेस्ट भेजा था, उस चीज़ में उन्होंने हायर ड्यूटी एज ए लीडरशिप उसको एम्फेसाइज करने के लिए। अगर वो सीता को रावण से छुड़ाने जा सकते थे तो राम को, और राम ने भी वही विरह भाव एक्सप्रेस किया और सीता देवी ने वही विरह भाव एक्सप्रेस किया, तो अगर राम राजा है तो सीता भी रानी है, अगर राम लीडर है तो सीता भी लीडर है, और उन्होंने भी एक आइडियल एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। जब उस भाव से
इस कृष्णमूर्ति कृष्ण का एक वीडियो भी है कि भगवान राम ने क्यों माता सीता का परित्याग किया, जिसमें उन्होंने तीन कारण बताए। अगर आपने देखो पहला तो यही कि ऐसा नहीं कि भगवान राम को विरह महसूस नहीं हुआ, उन्होंने त्याग दिया, भगवान राम भी उतना विरह महसूस किया है। दूसरा माता सीता की जो महिमा है उसको प्रकाशित करने के लिए कि माता सीता का चरित्र कितना महान है, अगर ये सब नहीं हुआ होता तो हम शायद माता सीता के त्याग को इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तीसरा एक मुझे ऐसा लगता है कि क्या जो रिलेशनशिप है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी पे ही डिपेंड करता है, क्या जो हस्बैंड वाइफ का जो एक संबंध है या कोई भी रिलेशनशिप क्या सिर्फ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी पे डिपेंड करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक होता है वपु संग और एक होता है वाणी संग, तो एक शिष्य के लिए वाणी संग, ऐसा नहीं कि वपु संग इम्पोर्टेंट नहीं है, कई बार कहा जाता है वपुसंग तो एक बहुत ही निचली चीज़ है इसका तो कुछ लेना देना है, वपुसंग भी इम्पोर्टेंट है बट उससे ज़्यादा वाणी संग। तो माता सीता को क्योंकि भगवान राम का हृदय पता था और भगवान राम की जो रेपुटेशन है उसको बचाने के लिए, क्या माता सीता को पसंद आता कि अगर भगवान राम के चरित्र पे हल्का सा भी दाग लगता, क्या माता सीता खुशी से रह पाती, तो तभी उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि किस प्रकार से भगवान राम की जो रेपुटेशन है उस मर्यादा की रक्षा करने के लिए उन्होंने भी उस त्याग को एक्सेप्ट किया। और उसी प्रकार से हम देख सकते हैं जो इस्कॉन की रेपुटेशन के लिए भी जो भी करना पड़े उसको प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए। यह एक्सप्रेस अनुतमा प्रभु अपने कोर्स इस्कॉन कम्युनिकेशन कोर्स में शेयर कर रहे थे, क्योंकि कहते हैं मैं 20 साल से एक कोर्स ले रहा हूँ परंतु मेरे को बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे थे इस कोर्स को लेने के बाद, उन्हें ऐसे लग रहा था कि शायद ये फील्ड को बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा अपना वो शेयर करना। तो वह एक बार फिर वो सीताराम लक्ष्मण हनुमान के विग्रह के सामने खड़े थे और प्रार्थना कर रहे थे, तो तभी उनको क्लिक हुआ कि किस प्रकार से माता सीता ने इतना बड़ा त्याग किया किसके लिए, भगवान राम की जो मर्यादा है रेपुटेशन है प्राइमली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस कह तो इस माता सीता के इस उदाहरण से उनको बहुत प्रेरणा मिली इस कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए कि इस्कॉन कम्युनिकेशन से किस प्रकार जो मूवमेंट की रेपुटेशन है उसको इंक्रीज किया जाता है और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, चाहे वो अलग अलग ऑडियंसिस से इंटरेक्ट करके, चाहे वो लिटरली एकेडमिक वर्ल्ड में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे इंटरनल डिवोटी कम्युनिटी में हो, किसी भी अलग अलग लेवल पर। और आखिरी जो मैं इस पर छोड़ना चाहूँगा कि गृहस्थ आश्रम को सुखमय होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति वैराग्य कैसे लेगा। अगर जो हम देखें शिला प्रभुपाद जी के जीवन को धारण से, या शिला प्रभुपाद ने किस प्रकार से लेटर्स में लिखा, तो इसको कैसे समझ सकते हैं फिर?
मेरे ख्याल से 18वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि जो उस प्रकार का डिटैचमेंट जो दुख की वजह से आता है, वो डिटैचमेंट इन मोड ऑफ इग्नोरेंस है। भागवतम के दूसरे अध्याय पहले स्कंद में जो बताया असली वैराग्य कैसे, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयाति आश्रु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। जब व्यक्ति सही प्रकार से भक्ति करता है तो उससे प्रॉपर वैराग्य उत्पन्न होता है। तो जरूरी नहीं कि गृहस्थ आश्रम या कोई ब्रह्मचारी आश्रम कहीं पर दुख डाला जाए व्यक्ति के अंदर वैराग्य लेने, उससे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा और व्यक्ति की भक्ति भी रुक जाएगी। सो एक जब एक ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट हो जहाँ पे कृष्ण केंद्र में आ सके, एक्चुअली आनंद उसी से आ सकता है जब कृष्ण की वजह, वही एक आनंद के स्रोत है, आनंद के सागर है। सो ये यहाँ पे जो प्रॉपर गृहस्थ आश्रम की बात की जा रही, आनंद में गृहस्थ आश्रम की बात की जा रही है, वैसा गृहस्थ आश्रम की बात की जहाँ पे कृष्ण सेंटर में हो सके, लोग ट्रस्टवर्दी रिलेशन के साथ में भगवान की वर्शिप कर सकें, उससे वैराग्य आएगा।
और यही बात शिला प्रभुपाद जी तीसरे स्कंद में लिख रहे हैं, कपिल मुनि बता रहे हैं कि क्यों ये क्वालिटीज डेवलप नहीं की जाती है। इसी संदर्भ में अगर आज के संदर्भ में ये देखा जाए तो क्या प्रमुख कारण है कि बिल्कुल इससे विपरीत क्वालिटी पाई जाती है। इफ देयरफॉर द लिविंग एंटिटी अगेन एसोसिएट्स विद द पाथ ऑफ अनराइचियसनेस influenced by sensually minded people engaged in the pursuit of sexual enjoyment and the gratification of the palate, he again goes to hell as before। कि अगर कोई व्यक्ति भौतिक इंद्र तृप्ति से बहुत ज़्यादा आसक्त है, विशेषकर sexual enjoyment and the gratification of palate, इसी के तात्पर्य में लिखते हैं, कई बार देखा जाता है कि धार्मिक लोग भी, बहुत हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस अपने धर्म को लेकर बहुत श्रद्धावान होते हैं और वो नियमित रूप से चर्च, मंदिर या मस्जिद जाते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वो ऐसे लोगों का संग को नहीं छोड़ पाते जो यौन जीवन से या जीवा को संतुष्ट करने से बहुत आसक्त हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, हो सकता है कोई ऑफिशियली बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो, परंतु अगर कोई ऐसे धार्मिक व्यक्ति के साथ भी संग करता है, देन ही श्योर टू स्लाइड डाउन टू द डार्केस्ट रीजन ऑफ हेल। और इसीलिए प्रहलाद महाराज ने भी, जब भगवान नरसिंह ने उनसे प्रार्थना, उनसे कहा कि मेरे से वर मांगो, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे हृदय के अंदर जितनी भौतिक इच्छाएं हैं कृपया आप उनको नष्ट कर दीजिए, क्योंकि इन भौतिक इच्छाओं से ही कोई सत्य, शौचम, कृपा, आध्यात्मिक बुद्धि, शाइनेस, तपस्या, क्षमा, मन नियंत्रण, इंद्रिय नियंत्रण, सौभाग्य, इन सभी अवसरों को खो देता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने भी नरसिंह भगवान से यही प्रार्थना की। तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी या कोई करेक्शन है?
हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैंने समझा वो क्या मैंने ठीक समझा है। आपका जो क्वेश्चन था कि क्या एक फैमिली को हैप्पी होना चाहिए, सो अगर हम देखें तो दिस इज वर्ण आश्रम धर्म में सारे आश्रम्स आ जाएंगे। सो अगर कोई गृहस्था में हैप्पी है तो वो फिर आगे जाके वानप्रस्थ भी लेगा और संन्यास भी लेगा, तो अपने आप वो डिटैच तो हो ही जाएगा सारी चीज़ों से। सो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। एंड सेकेंडली एक क्वेश्चन आपको और था कि कैसे हम किसी को प्लीज़ कर सकते हैं, तो उसका जैसे सीता माता के अंदर सारे गुण थे, तो फिर भी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे भी हम बोलते हैं कि हमारे इस्कॉन का और हम वर्तमान आचार्य का मूड क्या था, अगर हम उनका मूड पता है तो हम अच्छे से सर्व कर सकते हैं। जैसे भी हम मिशन में आते हैं और हम बोलते हैं कि हम अगर श्री प्रभुपाद के बुक्स रीड करते हैं, अगर उनका मूड पता है देन वी कैन सर्व। तो मुझे ये दो चीज़ समझ आई, सो इफ़ आई एम रॉन्ग यू कैन प्लीज करेक्ट।
पहला सिर्फ गृहस्थ नहीं, इसकी जो शुरुआत होती है गृहस्थ आश्रम हैप्पी ब्रह्मचारी को बाईपास करके नहीं बनता। तो जो सिस्टम है दैट इज ब्रह्मचारी में जो प्रॉपर ट्रेनिंग है मेन की, सेंस कंट्रोल में, सेंसिटिविटी में, क्लीनलीनेस में, रिस्पेक्ट में, जब मेन को इसमें ट्रेन किया जाता है, वुमेन को ट्रेन किया जाता है चेस्टिटी में, कुकिंग में, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, और वुमेन का और इन सब क्वालिटीज़ में जो आज हमने चर्चा की, वैन दे गेट एंटर इंटू गृहस्थ आश्रम, तो एक पीसफुल आध्यात्मिक कल्चर को इम्बाइब करते हुए प्रोग्रेस करते हैं, और उस प्रोग्रेशन उसके रिजल्ट अनुसार जो मन उसको जो ये आत्म साक्षात्कार होते हैं उससे वो वानप्रस्थ में और फिर संन्यास आश्रम में दिया जाता है। और दूसरा आचार्यों के मूड को यस निश्चित रूप से समझना चाहिए, उससे पहले उनकी इंस्ट्रक्शन को समझना चाहिए। कई बार अगर रिलेशनशिप नहीं है तो कई बार लोग हृदय खोल खोल के बता रहे मेरे हृदय की ये है मेरा हृदय का भाव, बहुत बार बता कोई एटलीस्ट उसको तो पालन कर लो, उसके बाद उसके फिर सटला रेस्पेक्ट को दिया जाए। बट अगर रिलेशनशिप नहीं है तो दूसरा व्यक्ति अपना लाउड स्पीकर में ही बोल रहा है कि मेरे हृदय की इच्छा ये है, तो सामने वाला परवाही नहीं करेगा क्योंकि संबंध ही नहीं है। तो इसके लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। जिसको जाना हो जा सकते हैं, टाइम हो गया।
कृष्ण प्रभु जी लेक्चर आपका बहुत अच्छा, पर मेन यही कि आपने जो बोला कि गृहस्थ आश्रम में सुख का अनुभव है ना, तो इसको हम आध्यात्मिक और भौतिक रूप में अलग अलग है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप में तो जो रामचंद्र और सीता जी का है, जो सीता जी ने समझा कि उनकी मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने नहीं, पर भौतिक जीवन में भी कई चुनौतियाँ आती हैं उसको भी हम यानी हस्बैंड वाइफ अगर सरलतापूर्वक उसको अनुभव करके मतलब लांग जाते हैं तो वो भी एक आनंद का ही अनुभव होता है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से सीता माता ने भी जितनी चुनौतियाँ उनके उसमें आई थी मतलब चाहे उसमें रहे थे तो फिर भी उन्होंने उसको अनुभव जो करा आनंद का ही अनुभव करा उस हिसाब से, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है।
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं मटेरियल प्रॉस्पेरिटी फॉलो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। मुझे लगता है अगर आध्यात्मिक केंद्र नहीं है तो भौतिक रूप से सेटिस्फाई होना बहुत टफ है। बाकी मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसमें, और कोई और बताना चाहे गृहस्थ आश्रम के बारे में, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रिंसिपल्स मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक आध्यात्मिक ऑब्जेक्टिव्स एक नहीं है या आध्यात्मिक कल्चर वहाँ पे उपस्थित नहीं है, कृष्णा वर्सेस सेंटर में नहीं है, मटेरियली पीसफुल सेटिस्फाई रहना खासकर आज के इस अपब्रिंगिंग और जो जो आज कल्चर चल रहा है सीम्स हाइपोथेटिकल। अगर वो सेटिस्फाई हैं भी तो आप देखेंगे वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स को उनके रिलेशनशिप्स में उपस्थित होंगे, तभी तभी वो रिलेशनशिप वर्क कर पा रहा है।
हरे कृष्ण गुरु जी, दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन इस्कॉन, लाइक आई हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आई हैव बीन रीडिंग रामायण एंड आई फाइंड इट रियली रॉन्ग दैट रामकृष्ण जी लाइक उन्होंने त्याग कर दिया सीता जी का। You said to protect the protection, to protect the reputation of Lord Ram. Dhoban ne dhamkai, to unhone tyag kar diya. But there are hundreds of people saying 100 different things about a woman or about anybody. But was it right? As a ruler, he was right. But as a husband, he was absolutely wrong. That's what I feel. So, I don't understand, how did Sita Ma's sacrifice gave the world a right thing. I don't understand that at all.
Have you ever wondered what was Mother Sita thinking at that time? What is the opinion of Mother Sita about Lord Ram abandoning her? What do you think? What is the opinion of Mother Sita?
Yeah, I'm sure she understood Lord Ram's heart. And when she was right, because my nature is the same. If I am right, I will not prove it to the world.
And my question is, according to you, what Lord Ram did is not correct, right?
As a husband, yes.
As a husband. What is the opinion of Mother Sita in this case about this act of Lord Ram? How let us hear from the person who is the wife of jinke sath hua hai, unki kya opinion hai?
I think she was unhappy, of course. She did see a woman's heart is as deep as ocean, so she would not, and she of course loved Lord Rama like anything, so she would not go and would not say bad words about him. But of course she was hurt a lot, as you also mentioned, right?
Yeah, definitely. First reason that why Lord Ram agar Bhagwan Ram ko koi aarop karta unki maryada pe kuch daag lagta kyunki mata Sita Bhagwan Ram se itna prem karte the to wo shayad isko bhi sahan nahi kar pate. Dusra iska jo ek adhyatmik karan hai ki adhyatmik संबंधों में दो प्रकार के रस होते हैं, जब व्यक्ति मिलते हैं और जब व्यक्ति विरह भाव को. और बताया गया जो जो प्रेम विरह भाव में उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है. तो जब माता सीता और भगवान राम वो विरह को महसूस कर रहे थे तो एक प्रकार से उनका प्रेम या जो एक दूसरे के प्रति जो एब्जॉर्प्शन या अटैचमेंट है वो बहुत बढ़ गया था. और आध्यात्मिक प्लेन पर सेपरेशन का फिजिकल सेपरेशन हो सकती है, परंतु स्पिरिचुअल लेवल पे वो सेपरेशन में भी यूनाइटेडनेस होती है. और तीसरा, किसी का भी जो महानतम गुण है वो सिर्फ विपरीत परिस्थिति में ही निकल के आता है. तो एक प्रकार से जो पूरा का पूरा जो पास्ट टाइम ऑर्केस्ट्रेट हुआ, इससे माता सीता का जो ग्लोरिफिकेशन है वो बहुत बढ़ गया. तो ये कुछ रीजंस जो मुझे आई एम नॉट श्योर.
नो, दैट इज टोटली ट्रू. ऑफ कोर्स शी हैज सेट अ वेरी गुड एग्जांपल, बट इन टुडेज वर्ल्ड आई डोंट थिंक इट इज प्रैक्टिकल एट ऑल. इफ यू सी टुडेज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड इफ यू सी पीपल अराउंड, आई डोंट थिंक इट इज प्रैक्टिकल.
सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि रिलेशनशिप इतने आइडियल स्टैंडर्ड पे भी हो, बट हमें एग्जैक्ट केस स्टडी कॉपी नहीं करना. हमें केस स्टडी के पीछे जो प्रिंसिपल्स है, जो लर्निंग्स हैं, उसको अपने लाइफ में इम्बाइब करना है. हमें ये नहीं कॉपी करना है कि भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया तो मैं भी अपनी पत्नी को. प्रिंसिपल इस पास्ट टाइम से भगवान राम ने एक जो लीडरशिप पोस्ट पे है उसका जो बिहेवियर है कितना स्पॉटलेस होना चाहिए, इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं. हस्बैंड वाइफ में एक जो हस्बैंड का रोल है या जो वाइफ का रोल है उसमें कितनी सेंसिटिविटी है, कितने हाई क्वालिटीज इन्वॉल्व हैं, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं. दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग. दिस पर्पस इज नॉट टू इमिटेट बट टू डिराइव प्रिंसिपल्स फ्रॉम.
राइट, थैंक यू.
इट्स अ इंटरेस्टिंग डिस्कशन. मैं इस पर देखिए, कई बार कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से बोले जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में एक आ, 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 एक गलत स्टैंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड लॉर्ड राम अबैंडन सीता? तो इसका मतलब लॉर्ड राम ने अबैंडन किया, अब हम डिफेंस में हैं लॉर्ड कि राम ने ऐसे अबैंडन किया, ये किया. तो पहले हमें देखे क्या लॉर्ड राम ने अबैंडन किया कि नहीं किया, और राम किस अवस्था में है और सीता किस अवस्था में है. जब सीता को रावण लेके गया तो तब राम की क्या अवस्था थी? राम वॉज क्राइंग लाइक एनी थिंग. अगर हम डिविनिटी वाला एस्पेक्ट को हम छोड़ भी दें, जस्ट लुक एट फ्रॉम जो मर्यादा स्थापित करने के लिए भगवान आए थे, तो भगवान राम पेड़ पौधे सभी से पूछ रहे थे सीता कहाँ है. तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इम्प्लाइज कि भगवान राम को सीता के एब्सेंस में भी उतना ही सेपरेशन, उतना ही प्रेम था, उतना ही डीप पेन फील हो रहा था जितना सीता को फील हो रहा था. और जैसे ही जब सीता देवी बाद में फॉरेस्ट में गई, अयोध्या आने के बाद फिर से वो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गई, उस समय भी राम ने क्या किया? क्या राम ने कई और विवाह कर लिए, कुछ एंजॉयमेंट शुरू किया? नहीं. तो खाली इस चीज को हम क्यों देख रहे कि राम ने सीता को अबैंडन किया?
क्या राम के पास कोई ऐसा सिचुएशन था, राम ने को ऐसा क्यों करना पड़ा और सीता ने भी इसको क्यों स्वीकार किया, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ सीता को फॉरेस्ट जाना पड़ा, ऐसा क्या हुआ कि राम और सीता का अलग होना पड़ा, ये क्वेश्चन हो सकता है राधा धन कि राम अबैंडन सीता। दो टाइप की सिचुएशन आज के मॉडर्न टाइम्स में डिस्कस किया जाता है, एक होता है मॉरल क्राइसिस, एक होता है एथिकल क्राइसिस। मॉरल क्राइसिस होता है कि सही और गलत के बीच में भेद, कि मुझे स्मोक करना चाहिए या स्मोक नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी बीवी को घर से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ये बहुत आसान है भाई, ये सही है या गलत है, ये नहीं घर के बाहर निकालना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, पर लोग उसमें भी फेल हो जाते हैं, वो अलग चीज है टेम्पटेशन की वजह से। एक होता है एथिकल क्राइसिस, जब मर्यादा स्थापित करने की बात आती है तो मॉरल मर्यादा स्थापित की जाती है, ये गलत है ये सही, आप सही चूज करो, परंतु सिचुएशन हमेशा सही और गलत के बीच में इतना आसान नहीं होती। सिचुएशन ऐसे भी आती है जब सही और सही के बीच में भेद करना पड़ता है और गलत के बीच में भी भेद करना पड़ता है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, आप देखोगे जो कम गहरा उधर कूदना पड़ेगा। तो जब सही और सही दो चीजों के बीच में भेद आ रहा तो क्या करें। मुझे बहुत पहले एक मूवी याद आ रही है जिसमें दिलीप कुमार साहब पुलिस कमिश्नर थे, उनके बेटे अमिताभ बच्चन थे, वो क्रिमिनल बन गए, मूवी के एंड में सीन आया कि वो अमिताभ बच्चन भाग रहे हैं और दिलीप कुमार बंदूक लेके खड़े हैं, बोले रुक जाओ, वो नहीं रुक रहा भाग रहा है, शायद कंट्री के बाहर भागने का प्रयास कर रहा है, दिलीप कुमार गन पॉइंट की ओर, क्या करे वो पिता है, वो गोली शूट करे या ना करे, व्हाट शुड बी डन, आप बताइए क्या करना चाहिए उस मूवी में, क्या होना चाहिए, क्या हुआ होगा। दिलीप कुमार ने शूट कर दिया था, फिर दोनों लोग रो रहे थे एक दूसरे को गोद में लेके अफेक्शन व्यक्त कर रहे थे, पर शूट किया उसने क्यों, एक हाईअर प्रिंसिपल लीडरशिप का स्थापित करने के लिए, उसको भी उतना ही पेन हुआ, उस मूवी में दिखाया गया था तो मूवी हिट भी हुई थी, उसको भी उतना ही पेन हुआ जितना शायद गोली लगने वाले को हुआ। वैसे ही भगवान राम और जब सीता का विच्छेद हुआ, यहां पे विरह हुआ, जब सीता को फॉरेस्ट में जाना पड़ा तो व्हाई डिड लॉर्ड अबैंडन सीता, ये क्वेश्चन क्यों घूम रहा है, ये उन लोगों से घूम रहा है जिन्होंने रामायण पढ़ी नहीं। भगवान राम ने अगर हम देखें रामायण में क्या क्या किया, व्हाई डिड लॉर्ड राम सैक्रिफाइस एवरीथिंग एंड गो टू द फॉरेस्ट, कैकेयी के एक बार कहने पे भगवान राम ने क्या क्या किया, ये सारा कोई क्वेश्चन कभी नहीं घूमता मीडिया में। ये क्वेश्चन उठाने वाले लोग कौन है, भगवान राम ने इतना राजकुमार होते हुए भी ऐसा सैक्रिफाइस कर दिया, ये क्वेश्चन उठाने वाला कोई नहीं आता। क्वेश्चन उठाने वाले राम ने बाली को क्यों मारा, राम ने सीता को क्यों निकाला, क्योंकि राम पूरे रामायण में आपको यही प्रश्न बना उसने के लिए, मतलब आई एम सॉरी नॉट कमेंटिंग अपॉन यू एज एन इंडिविजुअल, ये क्योंकि मीडिया में इस प्रकार के क्वेश्चंस उछालने वाले होते हैं और ज्यादातर जिन्होंने ये क्वेश्चन उछाल रहे होते हैं उनसे पूछे तो उन्होंने रामायण पढ़ी नहीं होती है, वो बोलेंगे सीता किसका बाप था, ये क्या था, इस प्रकार का उनका हेड एंड टेल का आइडिया नहीं होता। तो इस केस में देखें तो राम के पास एक एथिकल क्राइसिस का सिचुएशन था, वन टाइम एट वन प्लेस ही इज अ हस्बैंड, एट वन प्लेस ही इज अ लीडर, अभी क्या करें एज अ हस्बैंड, वो गलत है दिलीप कुमार एज अ फादर गलत है, गोली मार दी बेटे को, ये क्या है अपने बेटे को हर कोई गोली मार दे ऐसे, आज के समय तो दिलीप कुमार ने गोली मारी तो हम भी अपने बेटे को गोली मारते हैं, नहीं ये एग्जाम्पल लेने के लिए नहीं है, राम ने सीता को निकाला तो कोई और एग्जाम्पल लेने जाए, हम भी अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालते क्योंकि राम ने निकाला, अरे वो वहां पर यह समझा रहे हैं कि हायर प्रिंसिपल था कि वो लीडरशिप के लिए अगर कुछ भी परित्याग करना पड़े, राम के पास सबसे बिलेवर्ड चीज वहां पे क्या थी पूरी रामलीला में अभी तक, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस राम ने क्या किया था, एक अपनी पत्नी के लिए एक स्त्री के लिए रावण के पूरे खानदान को उजाड़ दिया था, एक को छोड़ा था विभीषण क्योंकि उनके सरेंडर में आया था, पूरे खानदान को उजाड़ के फेंक दिया, ये था राम का सैक्रिफाइस सीता के लिए। मतलब राम असीमित प्रेम करते थे, इवन लक्ष्मण शरीर छोड़ने वाले थे सीता को बचाने के चक्कर में, राम को सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी थे, इतना प्रेम था सीता से, तो भी सीता को भेज दिया, मतलब राम को कितना पेन हुआ, अगर मेरे लीडरशिप के रोल में ऐसा समस्या आता है तो ये पेन सहने के लिए मैं रेडी हूं। ये उन नेताओं को मैसेज देने के लिए है जिनके गद्दी पे बैठे बैठे स्कैंडल पर स्कैंडल प्रूव हो जाते हैं परंतु गद्दी नहीं छोड़ते, नहीं हम छोड़ेंगे, ये लीडरशिप को एक लेटर देने के, दैट इज माय ओपिनियन, आई एम नॉट डिबेटिंग।